परम आदरणीय के मुद्दिन भागवत के आचार्य संगे रात भर और वैष्णव संतों के श्री कृष्ण के संबंध में उनके भाषण प्रस्तुत किए गए, उसी की आज अंतिम कड़ी में हमने श्रीमद् भागवत पर एक गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें हमारी इच्छा थी कि मथुरा के या प्रतिमंडल के अधिकारी विद्वान लोग उपस्थित हों और श्रीमद् भागवत के विषय पर कुछ चर्चा हो। हमने इसके लिए श्रीमद् भागवत का निगम कल्प करो गलित फलम ये रखा कि श्रीमद् भागवत उपनिषद इत्यादि का जो प्रपक्व गलित फल है इसका स्वरूप क्या है, क्योंकि श्रीमद् भागवत ने ऊपर से दिखने वाले कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो परस्पर एक के विरोध आपात जैसा हमें दिखता है। जैसे पहले ही हम लोग ने जिस श्लोक में द्वादश स्कंध में सर्वेदांत सारम श्लोक में बदलाया गया है कैवल्यैक प्रयोजनम्, इसमें कुछ महानुभाव लोग श्रीमद् भागवत श्रवण का कीर्तन का ध्यान का फल मुक्ति बतलाते हैं। जैसे अभी हमारे पूर्व हमारे इसमें अभी बताया इसे श्रीमद् भागवत के इत्यादि के श्रवण मनुष्यों का जीव मात्र का उद्देश्य मुक्ति है, जो श्रीमद् भागवत के पठन पाठन से अनुशीलन से वो सभी मिल जाता है। और भी इसके परलम बहुत से श्लोक हैं, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मुक्ति ही कैवल्य ही श्रीमद् भागवत श्रवण का पठन पाठन का फल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर यमानम अपनी नवग्रहणी बिना मत से वरण जना इसी श्लोक में भगवान के दिए जाने पर भी चार प्रकार की मुक्ति कोई वैष्णव लोग नहीं लेते या कोई नहीं लेते। सैकी मुक्ति को तो बहुत ही भिन्न समझा गया। हमारे सिद्धार्थ स्वामी जी ने धर्माप्रोक्षित कई तो वो प्रोक्षित कैतव कैतव कहने से यहाँ पर साक्षात रूप में मुक्ति को भी दिया है। इस श्रीमद् भागवत में मुक्ति तक का भी विचार को धिक्कार दिया गया है। न साधनो कि भक्त आगे काम की नो मम पानी हम से कैवल्यम अपनर्भव
कैवल्यम
न पुनर्भव उसमें कैवल्य रूपी जो अपनर्भव है उसको भी ये भक्त लोग नहीं चाहते। श्रीमद् भागवत ने उसको नहीं श्रीमद् भागवत का अभिप्रेत उसको नहीं माना गया। ये आत्माराम से मुने इस तरह से इन सब लोगों में श्रेय स्थिति भक्ति मुदर स्थिति हो इन सब श्लोकों को देखने से पर्यालोचना करने से ऐसा देखा जाता है कि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य है
मुक्ति नहीं।
मुक्ति तो श्रीमद् भागवत में ऐसा देखने से ऐसा प्रतीत होता है जिसमें की स्थाई की मुक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत में देखा जाता है, स्पष्ट तो नहीं, किंतु यदि किया भी गया है तो अघासुर को मारकर, शिशुपाल को मारकर, दंतपत्र को मारकर फिर स्थाई की मुक्ति देने का कुछ आया है, प्रसंग आया है। तो क्या ये असुरों को देने योग्य ही ये मुक्ति है? इस पर मैं विद्वानों का विचार सुनना चाहता हूं। ये कैगल्य प्रयोजन का तात्पर्य क्या है? और जहां तक हम सुनते हैं कि भक्ति को तो रस माना गया है, किंतु मुक्ति को कहीं किसी शास्त्र में रस माना गया है कि नहीं माना गया है, इसे इस विषय का पता नहीं। तो यदि श्रीमद् भागवत रस मालूम है, रस के आधार है, तो फिर मुक्ति से इसका संबंध नहीं होना चाहिए। समय यहाँ के अग्रगण्य श्रेष्ठ पंडितों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर अपना सुंदर विचार करता हूं।
भक्ति रस का प्रवाह जिन्हें बहाया, ऐसे महापुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, जिसने भगवान के गुणगान के विषय में ऐसा वर्णन किया, भगवान का गुणगान वो कर सकता है और भगवान के गुणगान करने की पद्धति ये होनी चाहिए, तब भगवान के कुछ गुणगान, भगवान के स्वरूप, भगवत स्वरूप भागवत का कुछ उसको स्पर्श यत्किंचित प्राप्त हो सकता है। प्रणाम दपि सुनीति सरूरिव सहिष्णुना अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। हरि का सदा कीर्तन करो, लेकिन हरि का सदा कीर्तन करने से पहले ये तीन वस्तुओं का समादर करो। कौन वो तीन वस्तु? तो आपने आज्ञा की, तृणाम दप सुनी तेनो, तृणाम तिनका, तिनका सबसे नीचा होता है क्योंकि वो भूमि में पड़ा रहता है, उस पर लोग पैर रख करके चलते, लेकिन आपका हृदय है कि तृणाम दप सुनी तेन, उससे भी हम बहुत नीचे हैं, ऐसे हृदय के स्तर को ले जाओ, अर्थात अहंकार का सर्वथा सर्वांश में निराश किया। देह जो है ना, उसमें अहंकार आदि भरे हुए हैं बहुत जन्मों से, जब से जीव भगवान से अलग हुआ उस दिन से अहंकार आदि ने इसको घेरा, क्योंकि वो सब माया का परिकर है। भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं, मम माया दुरत्यया गीता में, इसलिए उस अहंकारादि का निराश जब तक नहीं होगा, हृदय विशुद्ध नहीं होगा, वो हृदय भागवत रस के अवगाहन के योग्य नहीं बन सकता। इसलिए आप श्री ने आज्ञा की कि प्रणाम तप सुनी तेनो, और तरुरिव सहिष्णुना, तरु नाम वृक्ष, वृक्ष जैसे सहन करता है, सहन तो वारयन्ति न, विषय अधिक लंबा न बन जाए, इसलिए मैं घूम के वही प्रस्तुत पर, वृक्ष जैसे अति सहन करने पर और उसके आश्रय में आने वाले को अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करता है, ऐसे आपकी आज्ञा है कि तरुरिव सहिष्णुना, वृक्ष की इसी तरह सहनशील बनो, इससे भी देह के अंदर जो कुछ अहम भरे हुए हैं उनका निराश होता है। तृणाम दप सुनी तेनो तरुरिव सहिष्णुना, और फिर तीसरा अमानिना मान देनो, स्वयं अमानी बनू, भगवान की इच्छा से कहीं मान मिल जाए प्रभु की प्रेरणा से उनकी लीला से वो बात अलग, लेकिन स्वयं हृदय में इच्छुक मत हो तो मुझे मान मिले। क्यों? मान जितना मिलता है ना उतना वो अहम को और जगाता है, अहम की वृद्धि करता है। मान मिलने पर अहम का निराश हो ऐसे जीव कहीं ईश्वर की सृष्टि में बहुत कम दिखाई देती है। इसलिए आपका सिद्धांत है कि अमानी हृदय में स्वयं ऐसी भावना करो, मैं मान के योग्य नहीं, मान के योग्य तो भगवान श्री हरि है। और मान देना स्वयं सबको, मान अपनी तरफ से सबको मान। और फिर कीर्तनीय सदा हरि, जब ये तीन वस्तु प्राप्त हो जाए उसके बाद वो जीव जो है ना वो भगवान के कीर्तन के योग्य बन जाए, अन्यथा तो वो वाणी भगवान का नाम लेती रहे होगा उसका सामान्य फल, साधारण फल जो है भगवान के नाम लेने का वो होगा, लेकिन जो मूल रूप में उस भगवान नाम का फल मिलना चाहिए उससे वो वंचित रहेगा। ऐसा यदि नहीं होगा तो इन सब तीन विशेषणों की आवश्यकता ही नहीं थी उस विशेष में। अस्तु, मैं जो है पूज्य पाद स्वामी जी की आज्ञानुसार एवं हमारे वासुदेव कृष्ण भागवत रस मर्मज्ञ विद्वत मूर्धन्य है वर्तमान युग में, उनकी आज्ञानुसार मैं निगम कर्प तरुण फलितम गलितम फलम जो श्लोक है वर्तमान भागवत गोष्ठी का विषय, प्रस्तुत विषय पर कुछ आचार्यों की कृपा से उनके कृपा बल का आदर आधार लेकर के कुछ अपनी वाणी को मैं पवित्र करने की इच्छा करूंगा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसे काल में प्रकट हुए जिस समय भयंकर युग था, उस यवनाक्रांत यवनों से भूमि आक्रांत थी, धर्म के नाम को कोई ले नहीं सकता था। अस्तु, विषय को अधिक न लंबा करके, उस भयंकर युग में श्री वल्लभाचार्य जी इस भूतल पर प्रकट हुए और प्रकट होकर के अनेक लीलाएं की, लेकिन जब भागवत के विषय में आपकी वाणी प्रकट हुई तो आपने ये आज्ञा की भागवत का रस तो बहुत गूढ़तम है और उस भागवत का आपने एक प्रकार से नहीं सात प्रकार से अर्थ किया, तत्वार्थ दीप निबंध नाम का एक ग्रंथ लिखा, उसके तीन प्रकरण किए, उस तीसरे प्रकरण में भागवतार्थ प्रकरण में आपने उसके चार प्रकार से अर्थ किए, और तीन प्रकार से सुबोधनी नाम की जो विख्यात उनकी व्याख्या है उसमें तीन प्रकार का अर्थ, ऐसे सात प्रकार का भागवत का अर्थ किया। अस्तु, विषय को समय देखते हुए लंबा न करके, उस सुबोधनी जी के अंदर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस निगम कल्प तरूर के ऊपर जब आज्ञा किया आपने, तो आपने आज्ञा किया कि वेद व्यास जो महर्षि हैं, वो महर्षि व्यास जी महाराज ने भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण किया, वो मंगलाचरण तीन श्लोकों से ही क्यों किया? जन्माद्यस्यतः धर्म प्रोज्जित और निगम कल्प करो, ऐसे तीन श्लोक है मंगलाचरण के। वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा व्यास जी ने तीन श्लोकों से ही मंगलाचरण क्यों किया? दो से कर सकते थे, चार से कर सकते थे, तीन श्लोकों से जो तीन की जो संख्या है उसका अभिप्राय बताते हुए संक्षेप में आपने आज्ञा की। जन्माद्यस्यतः, ये जो प्रथम श्लोक है ये बीज रूप है, और दूसरा श्लोक जो धर्म प्रवचित है वो वृक्ष रूप है, बीज से पैदा होता है वृक्ष, और तीसरा जो ये निगम कल्प करो जो आज का विषय है गोष्ठी का वो उसका फल है। और ये बताते हुए आपने कहा कि वेद वृक्ष जो है जिसका फल श्रीमद् भागवत है, उस वेद वृक्ष का बीज कौन हो सकता है? तो आपने कहा गायत्री। क्यों? संध्या के अंदर भी ब्राह्मण ऐसा वर्णन करते हैं, गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोग नमोस्तुते। छंद नाम जो वेद हैं उनकी वो माता है। अर्थात इसलिए आपने जो आज्ञा की कि महाराज वो जो गायत्री है वो बीज रूप है, प्रथम श्लोक। दूसरा श्लोक जो वेद वृक्ष है वो उसमें से प्रकट हुआ, और उसमें से प्रकट हुआ जो श्रीमद् भागवत है वो उसका फल है। इसलिए आपने वहां लिखते हुए ऐसा आज्ञा की फल रूपताम आह, मैं इस श्लोक की जो फल रूपता है उसका मैं वर्णन करता हूं। वर्णन करते हुए आपने आज्ञा की कि जैसे काव्यमय स्पष्ट अर्थ होता है ऐसे है, और वहां काव्यमय स्पष्ट अर्थ कहां होता है? जहां रूपक होता है। तो जैसे रूपक के निरूपण करने में काव्यमय स्पष्ट अर्थ होता है, ऐसा भागवत में ऐसा लोग कहते हैं। भगवानचार जी ने कहा ऐसा कहना भागवत के विषय में अनुचित है। काव्यवत रूपक निरूपण स्पष्टोर्थो भवति यद्यपि तथा भागवत कथनम अनुचितम। भागवत के विषय में ऐसा कहना कि ये भागवत जो है वो रूपक है काव्य की तरह, ऐसा अनुचित है। क्यों? तो आपने कहा सर्ववेद सारोद्धारत्वा, संपूर्ण वेद का जो सार है उसका भी उत्कृत फल है, सार है, सार का भी सार है। इसलिए आपने कहा ऐसा कहना अनुचित है। इसलिए रूपकादि जो होते हैं ना, आपने कहा रूपकादि ग्रंथ बुद्धि परिकल्पितम, बुद्धि में ये अध्ययन करते करते कुछ समय का जो है वो कुछ अनुभव बनता है तो उसमें वैशिष्ट्य प्राप्त होता है, तो वो परिसह उसकी कल्पना चलती है, तो वो कल्पना का विषय है। श्रीमद् भागवत जो है वो कल्पना का विषय है, ऐसा कहना सर्वथा अनुचित। अस्तु, संक्षेप में समय को देखते हुए और वस्तु ऐसी है कि आपने ये सिद्धांत बताया कि वो व्यापी वैकुंठ, जो व्यापी वैकुंठ अक्षरात्मक है, वो अक्षरात्मक व्यापी वैकुंठ जो है उसमें कौन विराजते हैं? वेद वृक्ष। उस अक्षरात्मक व्यापी वैकुंठ में प्रण भी जो वेद तरुवृत्ति, प्रण जिसका बीज है ऐसा वेद, प्रण नाम ओंकार, ओंकार जिसका बीज है ऐसा वेद वृक्ष उस अक्षरात्मक व्यापी वैकुंठ में विराजता है। विराजता था ऐसा नहीं, वेद तर रस्ती अस्थि से वर्तमान कालिक क्रिया बताई, आज भी वो विद्यमान है वो वेद वृक्ष। तो अक्षरात्मक व्यापी वैकुंठ में प्रणव ओंकार जिसका बीज है ऐसा वेद वृक्ष आज भी वहां विद्यमान है। और व्यास भगवान जो भगवान का अवतार है, अथवा आपने कहा वो आदि नारायण का स्वरूप है, ऐसे व्यास महर्षि जब वहां से इस भूतल पर जीवों को उद्धार करने के लिए पधारे तो संपूर्ण प्राणियों को आनंद देने के लिए जैसे चलती समय विचार किया जाता है कि कोई शकुन हो, वो शकुन के रूप में कोई फल ला करके अगर यात्रा जाती समय देता है तो बहुत एक शकुन माना जाता है। ऐसे आप जब वहां से पधारे तो व्यास नारायण भगवान के लिए वो श्रीमद् भागवत फल जो है वो प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? वेद वृक्ष से। आपने आज्ञा की कि जो वृक्ष में फल पक जाता है पूरा वो गलित होता है, गलित का अर्थ वो गला हुआ ऐसा नहीं। इसलिए कहने का सिद्धांत ऐसा है अतिपक्वं फलं गलति स्वतः एव पतति, ऐसी आज्ञा की आपने सुबोधनी की। अत जो फल फल पक जाता है वो स्वतः ही वृक्ष से आता है नीचे। स्वतः जब नीचे आता है तो उसकी पूर्ण परिपक्वता है, पूरा पक चुका है ऐसा बताया। और पूरा जो फल पक जाता है उसमें सर्वांश में उसमें मधुरता व्याप्त होती है, उसके दर्शन से ही बहुत कुछ और उसका रसा स्वाद सब तो वो तो जिगमी दूर करा, वो तो बहुत सुदुर्लभ प्रकार है। अस्तु तो इसलिए आप जब वहां से पधारे तो जैसे पधारती समय यात्रा में कोई फल देने से शकुन होता है, ऐसे उसके श्रीमद भागवत जो फल है उसको आप लेकर के स्थल पर पधारे। और पधारने में आपने आज्ञा की कि वो जो मैं श्रीमद भागवत जो वेद वृक्ष का फल है उसको लेकर के आ रहा हूं, वो कहां से आया? तो कहा निगम कल्प तरूर गलितम फलम। निगम का अर्थ क्या? तो आपने कहा नी उसमें उपसर्ग है, उद्गम धातु है, नितरंग गमयति इति निगम, नितरंग गमयति ही ब्रह्म बुझे, ब्रह्म का जो बोध कराता है, ब्रह्म से जो संबंध जोड़ता है उसका नाम निगम है। इसलिए आपने कहा परमोपनिषद निगम, उपनिषदों में भी जो मूर्धन्य है वो निगम है, इसलिए उस निगम से निकला, निगम जो है उससे निकला ऐसा नहीं, निगम जो है वही कल्प वृक्ष है, निगम एवं कल्प तरु, वो निगम जो वेद है वही कल्प वृक्ष है, इसलिए एवकार दिया। एवकार का अर्थ होता है ही, अपी का अर्थ होता है भी, इसलिए कहा निगम एव कल्प तरु, निगम जो है वही कल्प तरु है, वेद वृक्ष है, उससे ये गलित नाम अत्यंत परिपक्व होकर के पूर्ण माधुर्यानुभव कराने के लिए ये फल जो है भूमि पे व्यास महर्षि के द्वारा आकर के अधिकारी जीवों का उद्धार करने को आया। लवाजार जी ने कहा अधिकारी को बहुत आपने पकड़ा, इसलिए आपने कहा वो वहां से आया और आकर के फिर उसका संबंध कहां हुआ? सुख मुखा लवाजार जी ने कहा सुखदेव जी में आकर के क्यों फलित हुआ? अरे पिता तो व्यास महर्षि हैं उनके, वहां फलित नहीं हुआ उतना। तो आपने कहा सुखदेव जी जो है वो मुक्त हैं, सुखो व्यास पुत्र हो मुक्तत्वात् अत्र अधिकारी, जब तक मुक्त नहीं होगा सांसारिक उसके लिए कोई न कोई बाधाएं सताएंगी तब तक वो भागवत का अधिकारी कहां, भले वो समय के अनुसार वो कह भी ले, वक्ता भी बन जाए श्रोता भी बन जाए, उसका अधिकार संपन्न होने से जो रसास्वाद होता है वो अधिकार प्राप्त नहीं हो। इसलिए आपने आज्ञा की अत्यंत विरक्ते सुखे ग्रंथार्थ फलित, इसलिए अत्यंत विरक्त अत्यंत वैरागी जो सुखदेव है वो सुखदेव के अंदर आकर के वो श्रीमद भागवत जो ग्रंथ है उसका अर्थ फलित हुआ है, उसका अर्थ वहां प्रकट हुआ। तो आपने आज्ञा की कि सुखदेव जी जो है ना उनके हृदय में भक्ति रस को पहले से ही विराज रहा है, विषय लंबा बनेगा इसलिए नहीं कह रहा, चलो इसलिए भक्ति रस को उनके हृदय में पहले से ही विराज रहा है। और फिर व्यास जी जो पिता हैं उनके द्वारा वो भागवत रस आकर के प्राप्त हो, लवाचार जी महाराज ने कहा भक्ति रस पहले से भागवत रस फिर आया, दोनों रसों का समालोचन हुआ उस सुखदेव जी के हृदय में, तो तब हृदय ये है हृदय प्रतिष्ठति ही, जैसे कोई सरोवर होती है स्वच्छ, ऐसे वो दोनों रसों का समालोचन होकर के वो हृदय में वो हृदय की तरह विराज रहा है। और उस हृदय से फिर वो महाराज है, भागवत में ऐसा लिखा है जहां ब्रह्मा जी ने दसम स्कंद पूर्वार्ध में चौदहवें अध्याय में नौवीं तिथि पर बबसे से स्तुति की, वहां ऐसा वर्णन किया है कि संत पुरुष जो होते हैं सांचे संत, संतों के लक्षण जिनमें खटते हैं वो साचे संत हैं। अस्तु लंबा विषय। इसलिए तुम्हारा वो जो संत है ना, वो ऐसे ही जहां तहां बोलते नहीं, जिस जिसके आगे कहते नहीं, उनका मुख जब ही खुलता है जब सामने अधिकारी विशेष मंडल होता है। अस्तु। तो जब संतों के हृदय ऐसे होते हैं कि वो जहां तहां कहते नहीं, तो संतों में शिरोमणि है सुखदेव जी तो आए, परमहंस चूड़ामणि वल्लभाचार्य महाराज ने जहां प्रथम स्कंद में आगे जाकर के ऐसा वर्णन किया, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमरात्मनाम भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्ये महिस्त्रिया। जहां कुंती माता ने स्तुति करते हुए भागवत के प्रथम स्कंद में ऐसे कहा, भगवान शेखनाथ मैं आपके स्वरूप को क्या जान सकती हूं, आप तो ऐसे परमहंस कोटि के जो महात्मा हैं उनको भक्ति योग विधान करने के लिए प्रकट हुए, मैं आपको क्या देख सकती क्या पहचान सकती। वहां परमहंस के ऊपर व्याख्यान करते हुए श्री वल्लभाचार्य महाराज ने सुबोधरी महिषा कहा कि हंस अलग और परमहंस अलग दोनों का विवेचन किया। आपने कहा जो निरंतर ज्ञान संपन्न है, जिनको आत्मा का भी ज्ञान है, जिनको देह का भी भान है, ऐसे जो उभय कोटि में बने हुए हैं वो हंस कोटि के महात्मा हैं। और ये तो केवलम आत्मानमेव पश्यन्ति के परम हंसा, जिनकी दृष्टि निरंतर सतत जो है वो केवल आत्मा के ऊपर ही व्याप्त है, वही दृष्टि बिंदु है जिनका है, और देहगा उनको भान नहीं। ऐसे जो महात्मा होते हैं उनका नाम होता है परमहंस। ये सुखदेव जी जो है वो परमहंस हैं। तो परमहंस ऐसे कैसे जहां तहां बोल सकते हैं? इसलिए आप भागवत में जो ध्यान से सुनेंगे, भागवत ऐसा विषय नहीं कि तुमने कथा कराई हमने कर दी और चल रहा है प्रवाह, जैसे आज प्रवाह चल रहा है भारत में, हमने कथा कराई हमने पैसा खर्चा, वैसा ऐसा लंबा विषय में ज्यादा है। ऐसे लिए भागवत का सुखदेव जी का वर्णन लिखा है, जो परीक्षित राजा गंगा के किनारे पर बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां समुपस्थित थे, परीक्षित ने प्रश्न किया, कोई भी उनका समाधान नहीं कर सका। विचार करो उनका कितना वो आगे का समय, और उस समय में कैसे ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि वो भी समाधान जहां नहीं कर सके। परीक्षित के साथ दिन से मुक्ति का वहां सुखदेव जी महाराज पधारते हैं और उनका थोड़े शब्दों में वर्णन किया, शनै शनै प्रेमणा पठन भागवतम, शनै शनै भागवत का पाठ करते हुए कैसे प्रेमणा प्रेम से, प्रेम जो है ना वो देह का विषय नहीं है, प्रेम जो है ना वो हृदय का विषय, हृदय में जो स्पर्श होता है भगवान का जब प्रेम प्रकट होता है, इसलिए प्रेम से धीरे धीरे जो है वो पाठ करते हुए पधारे सुखदेव जी। और उन सुखदेव जी ने जब परीक्षित राजा का सब कुछ सुना और सुनने के बाद सुखदेव जी ने कहा, राजन ये तुम्हारा प्रश्न है ना वो बहुत साधारण है, 7 दिन तो बहुत होते हैं राजन, संकट भी उसका भले श्रवण करो, लेकिन श्रवण करने पर अगर तुम अधिकारी हो तो भक्ति का आवेश निश्चित होगा। भक्ति का यदि आवेश नहीं होता है श्रवण करने पर, तो उस श्रवण में अभी कचाई है, श्रवण के अधिकारी नहीं बने। जब श्रवण के ही अधिकारी नहीं बने तो वर्णन के वक्ता के बल अधिकारी तो जगह भी दूर तरह शाही बहुत लंबी हो गई है। अरे महाराज इसलिए समय की मर्यादा को रखते हुए और जायते महाराज पर तथापि प्रथम कथम क्रिय थे तो मया स्वयं विचारित अस्तु। इसलिए महाराज उस विषय को लेकर के आपने ये बात कही कि वो भागवत जो है वो क्या है, तो आपने कहा रसम रस रूप है, रसस्वरूप है, है? भगवान श्री कृष्ण के लिए भी वेदों में ऐसा कहा, रसो वैसो रसंजेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, लोग जगत में आनंद को ढूंढते हैं, आनंद नहीं मिलता, सुख मिलता है और सुख के पीछे दुख खड़ा है, वो तो जोड़ा है, द्वंद है दोनों, आनंद नहीं। आनंद एक श्री कृष्ण के पास, और वो श्री कृष्ण आनंद किसको देते हैं, जिनके व्यवहार से, जिनके कारण से श्री कृष्ण का हृदय जब पिघलता है, श्री कृष्ण का हृदय जब पिघलेगा तब आनंद की कुछ अनुभूति होगी, उस आनंद का छीटा बिंदु आकर के प्राप्त हो, नहीं तो श्री कृष्ण ने उस आनंद को केंद्रित कर रखा है। अस्तु, इसलिए कहा वो रस जो है ना भागवत रस है, उस भागवत रस को वल्लभाचार्य जी ने कहा, व्यास जी महाराज ने कहा पिबत, सुनो तो ऐसा नहीं कहा कि उसको सुनो, क्यों कि रस जो है वो तो पिबत पान के योग्य है, रस श्रवण का नहीं, उसमें प्रतिभा जो भगवान की लीला है उनका श्रवण होता है, लेकिन लीला भी भगवत स्वरूप है, इसलिए वो रसम रस रूप है, भागवत वो ग्रंथ का नाम है, आलय है महाराज है, लय जो मोक्ष है वो भी उसके आगे आराम ईषद है, तुच्छ है, मोक्ष की कोई कीमत नहीं भागवत रस के आगे। और भी कई पक्ष आपने रखे, समय की मर्यादा देखते हुए विवत भागवतम रसमालय, फिर कहा आपने मुहू, मुहू का अर्थ होता है बारम्बार, भगवाचार्य जी ने कहा ये मुहू शब्द का प्रयोग क्यों किया व्यास महर्षि ने, तो आपने कहा व्यासत्व पर वशत्व आपा देगी, व्यास जी की परवस्ता कहते हैं कि वो रस इतना विलक्षण है भागवत रस, जो व्यास कहते ब्रह्मर्षि महर्षि को भी उसने पर्वत बना दिया, पर्वत हो जाता है ना, उसका अर्थ क्या है लौकिक में समझो, जैसे ध्यान संधान भूल गया, पता ही नहीं मैं कहा हूं, कौन हूं, क्या कह रहा हूं, क्या कहना चाहिए, इसलिए आपने कहा वो व्यासत्व पर्वतत्व आपा गई थी, मुहू शब्द जो है ना व्यास की परवस्था को बताता है कि मैं इस भागवत रस को लेकर के आया हूं, मैं विवश हो गया स्वयं, क्यों अन्यथा वल्लभाचार्य ने कहा अन्यथा रसिका स्वयं बाक्षती व्यर्थम वचनं स्यात्, ये मुहू कहना व्यर्थ हो जाएगा, जो रसिक है वो तो स्वयं उसका पान करेंगे, इसलिए दूसरी बात कही मोहपानम विधीयते रसक ज्ञान आए, रस का ज्ञान करने के लिए एक बार श्रवण से रस का ज्ञान नहीं होता, इसलिए आपने कहा पहले शब्द का श्रवण होता है और शब्द के श्रवण के बाद उसमें धरा हुआ भीतर जो अर्थ ज्ञान है वो होता है, और अर्थ ज्ञान होने के बाद फिर रसास्वाद होता है, इसलिए रसास्वादन जो है रस में उसका आस्वादन होना वो अतिरिक्त है, उसकी तीन स्थिति है उसकी, इसलिए आपने कहा अहो से बहुत आश्चर्य प्रकट किया गया है रस को, है भूमि के अंदर मैं इस रस को लाकर के जो मैंने प्रकट किया है वो आप जैसे अधिकारियों के लिए, भवताम एव अर्थे अयम रस समानी, आप जैसे परम अधिकारियों के लिए ही मैंने भागवत रस को ला करके यहाँ प्रकट किया, इसलिए आपने आज्ञा की कि वो रसिका और भावका हा दो आपने संबोधन की, हे रसिका हे भावका, दो कहने की आवश्यकता क्या थी, रमाचार्य जी महाराज ने कहा केवल अगर रसिक रहेगा भावुक नहीं होगा, विचलित हो जाएगा, श्री कृष्ण की ऐसी लीला है जिनमें बड़े बड़े योगी भी दिख जाते हैं, सबको पता होगा श्री कृष्ण जब मोहनी चरित्र में मोहनी जी बन के आए तो जो शंकर समाधिस्थ रहते हैं वो भी विचलित हो गए, इसलिए श्री कृष्ण की लीला ऐसी है जो तो शंकर को विचलित कर रहे हैं, तो और इस पर जीव की क्या स्थिति है वहां, आज तो इसलिए आपने कहा केवल रसिक जो है वो भागवत रस के लिए अपेक्षित नहीं, भागवत रस को अगर समझना है तो महाराज भावुक भी बनो, भावुक का अर्थ कहते हुए जैसे व्यवहार में कहते हैं ये होनहार, अथवा दूसरा अर्थ आपने किया भावना चतुरापा, भावना चतुर जो होती है वो कैसे होते हैं, तो आपने उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा विस्मृते भी रसे भावनया रसावनेशन कुर्वंती, रस जो है वो विस्मृत होता है, स्थिर नहीं रहता, वो तो सुखदेव जी जैसे अत्यंत विरक्त जो है उनमें वो रस स्थिर रहता है, जिनकी ब्रह्माकार वृत्ति दृढ़ हो चुकी है, लौकिक जीव निरंतर अनेक विषयों को भोग रहा है, उसकी वृत्ति कैसे स्थिर हो सकती है? इसलिए आपने कहा जो भावना के द्वारा जो विस्मृत रस है, जिस रस को भूल चुके हैं, विस्मृत रंग भूल गए, उसको भावना के द्वारा फिर धीरे धीरे फिर उनको रसाभिनिवेश होने लगा। बहुवचन का अभिप्राय बताते हुए आपने अंततो गत्वा आज्ञा की, एक के लिए रसाभिनिवेश नहीं होता है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया। ऐसा यथामति उनकी आचार्यों की कृपा से जो कुछ मुझसे बन सका है, तो तेरे आप सब बड़े लोगों के सामने समर्पण किया, ऐसा कहते हुए मैं स्वामी जी एकदम वासुदेव कृष्ण जी एवं समस्त को मैं प्रणाम करते हुए विराम प्राप्त करता हूँ।
जो महाराज जी ने प्रश्न किए कदाचित वे बार को महाराज जी का ये कहना है प्रयोजन ये चैतन्य महाप्रभु के मत से उसकी व्याख्या और मुक्ति भक्ति तारतम्य में मैं इन शब्दों के साथ श्री पांडे जी का स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कभी प्रारंभ करें और समय का प्रबंधन
संचालक पूज्य डॉक्टर साहब एवं समस्त विद्वद्गण आचार्यवृंद भक्तवृंद एवं माँ पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार एवं पूज्य श्री डॉक्टर साहब के आदेशानुसार मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़े से ही समय में कुछ आप लोगों के गाड़ी प्रस्तुत करता हूँ। पूज्य श्री स्वामी जी का आज जो विषय है वो निगम कल्प तरूर कल्पम विषय दिया गया है। स्वामी जी महाराज ने बड़ा रसमय और आनंदमय विषय दिया है। पूर्व वक्ता ने तीनों श्लोकों की संगति आपके सम्मुख प्रस्तुत की। व्यासपाद ने जो तीन श्लोक बनाए क्यों कथा का जो प्रारंभ है वो तो कथायाम सक्षण हरे आधारित से होगा, तो प्रयोजन अंदृष्ट मंदोप न प्रवर्तते ऐसा सिद्धांत है, तो व्यासपाद तो साक्षात भगवान के जाना बता रहे हैं, तो तीन श्लोकों की संगति आपने बताई, बीज भाव वृक्ष भाव और फल भाव। बीज की अपेक्षा वृक्ष और वृक्ष की अपेक्षा फल, फल जो होता है वो कैसा होता है, रसमय होता है, आनंदमय होता है। इस आनंदमय रसात्मक जो भागवत रस है, इसका अधिकार जो है वो उष्णा चक्रवर्ती पास कहती है, पहली का है पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भोगभाव का। यह भावुका शब्द जो है उसके दो अर्थ है, भावुका और भावुका भी पाठ है। पहले पाठ में भू मिश्रीकरण चिंतन वो ऐसी चुरादी धातु है, उस चुरादी धातु से यहाँ जो है वो भावक शब्द बनाया है। उसका क्या अर्थ है कि जो रसात्मक आनंदात्मक श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण का जो अहर्निश चिंतवन करते हुए रसमय श्री कृष्ण रूप हो जाते हैं, उन्हीं के लिए ये जो है वो उद्देश्य रख करके चक्रवर्ती पाद कहते हैं, कहा गया है भाव का। देखो तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि रसो वही सह रसम ये आयम लब्ध्वा आनंदी भवती, कोई ये अप्राण्यात यदेत आकाशः आनंदो नस्यात् एतदेव आनंद याति। आपको बाहर जाने की देखने की कोई खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्थायी भावात्मक श्रृंगार रसराज जो श्री कृष्ण है वो आप सबकी अंतःकरण वृत्ति में विराजमान है। इसलिए पुल्लिंग निर्देश किया है श्रुति में रसो वही सह, तो वो सह जो है वो तत्पर वाच्य कौन है कि वो ही श्री कृष्ण रसराज रस सागर आनंदमयो व्यासार इन ब्रह्म सूत्रों में प्रतिपादन किया जा रहा है प्रभु को, वो ही ज्ञान हुआ वो श्रुति में सौ पद तर पद के वाक्य है। इसलिए रसो वही सौ का अर्थ है कि सह मैंने श्री कृष्ण। अब उस रसात्मक श्रृंगार रस रूप श्री कृष्ण को प्राप्त करके ही सुख मिलता है, आनंद मिलता है, अन्यथा जीव को आनंद नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं कि रसिका भूविभाव का। रस शास्त्र में ऐसी पद्धति है कि रस्यादि स्थायी भाव से ही रस जो है वो अभिव्यक्त होता है। भरत का ऐसा जो है वो सिद्धांत है कि भावानुभाव संचारी भाव संयोगान रस निष्पत्ति। इसलिए चक्रवर्ती पाद का भीतरी ध्वनि और प्रसिद्ध ध्वनि का आशय ये है कि भाई यदि रस को हो श्री कृष्ण रस में निष्ठा हो श्रद्धा हो विश्वास हो उसकी लीला माधुरी रस में यदि प्रेम हो तो भागवत में आना अर्थात अथवा भागवत को देखना भी मती। इसलिए कहते हैं भागवत तो देवादिक विषय जो रस्यादि है वो ही भाव है। भूधातु से जो है वो भय प्रत्यय करके भाव, भाव का नाम है सत्ता। तो वो आनंद का जो उपहित चैतन्य है श्री कृष्ण स्थायी भावात्मक, वो सबके अंतकरणों के वृत्ति के विषय है। इसीलिए तो श्री गोपी जनों ने रास में कहा है कि कुरवंत हित पर रतिम कुशलास्व आत्मन नित्य प्रिय पत सुधार विराट दई किम तन्ना प्रतीन बरदेश्वर मास्म छिंद्या आसाम भृताम परिचिरा करविंद नेत्र उन्हीं का श्रुतियों का जो भाव था वो साक्षात जो है वो श्रृंगार रस रूप श्री कृष्ण हुए। किन्हीं महानुभावों ने कहा भी है कि पुंजी भूतम प्रेम गोपांगनाना। श्री कृष्ण क्या है कि गोपांगना जो है ब्रज सीमंतनिया, उन ब्रज सीमंतनियों का जो प्रेम है वो ही इकट्ठा होकर के और रसराज श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। इसलिए भाव का अर्थ ऐसा करना चाहिए चक्रवर्ती पाद के अनुसार कि जो श्रृंगार रस रूप श्री कृष्णम भावयंती विचिंतयंती पौनः पुण्येन इति भाव का। दूसरे आचार्य जो है वो भा भूखा पाठवी मानती है, वो भू धातु से लटपद सूत्र से उकय प्रत्यय करके तच्छील अर्थ में और भावुक शब्द की निष्पत्ति करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रत्यादि स्थायी भाव के द्वारा ही रसात्मक जो है वो स्वरूप प्रकट होता है। इसीलिए श्रीधर स्वामी जी पूज्यपाद कहती है कि रस विशेष भावना चतुरा। रसिका का अर्थ क्या है? रसोमयी सह श्री कृष्ण श्रृंगार रसराज, और वो श्रृंगार रसराज जहाँ नित्य विराजमान है उसका नाम है रसिका। या मत्वर्थी जो है वो फल प्रत्यय हो रहा है